नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो। बैठक के दौरान कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, निर्यात, शिपिंग, व्यापार, वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उसे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देशभर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं है। तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खुदरा दुकानों पर भी किसी प्रकार की कमी की सूचना नहीं है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
सरकार ने देशभर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है और घबराहट में की जाने वाली बुकिंग कम हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाई गई है, साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वो समुद्री व्यापार को जारी रखने के लिए जहाजों की आवाजाही, बंदरगाह संचालन और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर नजर रख रहा है। अब तक 547 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने विश्व के नेताओं से ईरान का सामना करने में इसराइल और अमरीका का साथ देने का आग्रह किया है। उन्होंने आज कहा कि ईरान के हाल के मिसाइल हमलों से पता चलता है कि ईरान विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल दक्षिणी इसराइल के अराद और दिमोना में ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये टिप्पणी की है। इन हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने आज अराद में हमले की जगह का दौरा किया। बाद में श्री नेतन्याहू ने ईरान पर यरूशलम में नागरिक क्षेत्रों और स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने लंबी दूरी तक पार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और ऊर्जा मार्गों को खतरा पैदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त रूप से 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनसे पहले पवन कुमार चामलिंग 8,930 दिन तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अगले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी। उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन पहुंच चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार, जीवन स्तर और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। श्री पाटिल जल महोत्सव 2026 के समापन समारोह के अंतर्गत आयोजित सुजल ग्राम संवाद में 5 राज्यों के प्रतिभागियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहली बार शीर्ष स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान में पिछले वर्ष आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की वृद्धि दर्ज हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तराखंड में बिजली गिरने तथा तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, रायलसीमा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, कोंकण और गोवा में कल गर्म और उमस भरे मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।